समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात, आज सवेरे में आप सभी को फरहत नाज का नमस्कार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और याद करेंगे कुछ जानी मानी हस्तियों को, मौसम की जानकारी लेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और अंत में याद करेंगे कुछ हस्तियों को भी और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी। और आज मेरा साथ दे रही है मेरी सहयोगी नीना रक्कर। नमस्कार नीना।
हेलो फरहत एंड वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 3rd of January। सो लेट अस बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट। फरहत
जी, नीना, सबसे पहले क्या है खबरों में आज?
यस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट एंड ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन दिल्ली टुडे। ही विल इनॉग्रेट अराउंड 1,700 न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स फॉर द ड्वेलर्स ऑफ जेजे क्लस्टर्स एंड ऑल्सो हैंड ओवर कीज टू एलिजिबल बेनिफिशरीज इन अशोक विहार इन द नेशनल कैपिटल। The inauguration of newly constructed flats will mark the completion of the second successful in situ slum rehabilitation project by the Delhi Development Authority. The project is aimed at providing the residents of the JJ clusters with a better and healthier living environment equipped with proper amenities and facilities. A report. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone of 3 new projects in Delhi University worth over 600 crore rupees. He will lay the foundation stone of Veer Savarkar College at Roshanpur, Najafgarh. Talking to Akashvani News, Delhi University Vice Chancellor Professor Yogesh Singh said the Prime Minister will lay the foundation of an academic block in the Eastern Campus at Surajmal Vihar in East Delhi and an academic block in the Western Campus at Dwarka.
Things will be very different. New opportunities will be created to students in coming years. So we are very happy that Honorable Prime Minister will lay stone for such projects.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। इस अवसर पर वे एक नए मनोचिकित्सा ब्लॉक, केंद्रीय प्रयोगशाला परिसर और छात्रावास भवन का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति बेलगावी में एक अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी उपस्थित रहेंगे।
Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari yesterday announced projects worth 12,500 crore rupees to improve Delhi's transport system and reduce congestion as well as pollution in the city. He also announced a fund of 1,200 crore rupees from the Central Road and Infrastructure Fund for Delhi. Under the project, direct connectivity to Delhi-Katra Expressway will provide direct connectivity to vehicles coming from Jammu and Kashmir and Punjab to the Indira Gandhi International Airport and Delhi-Mumbai Expressway. Vehicles coming from Dehradun will get alternate connectivity to the Indira Gandhi International Airport through Dwarka Express, reducing the travel time from 1.5 hours to 45 minutes. A correspondent reports that with the implementation of these projects, the pressure of vehicles coming from outside Delhi will be reduced. Traffic jams and air pollution issues will also decrease. Earlier, Delhi's 7 MPs met Mr. Gadkari in New Delhi and submitted a letter to him related to Delhi's transport system and pollution problems being faced by the people.
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश ने भारत के 75 मछुआरों को कल बांग्लादेश तटरक्षक बल को सौंप दिया है। बांग्लादेश तटरक्षक बल रविवार को इन मछुआरों को भारत को सौंपेगा। सद्भावना के तौर पर भारत भी रविवार को बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा करेगा। हाल के महीनों में बांग्लादेश ने अनजाने में समुद्री सीमा पार कर रहे उनकी सीमा की जल सीमा में प्रवेश करने वाले कुछ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था। भारत ने भी इन्हीं परिस्थितियों में बांग्लादेश के कई मछुआरों को हिरासत में लिया। वहीं गुजरात के जामनगर में मैरिन नेशनल पार्क में आज से पक्षियों की गिनती का काम शुरू हो रहा है। ये पहला मौका है जब देश में समुद्र तटीय पक्षियों की गणना की जा रही है। राज्य का वन विभाग ये आयोजन पक्षी संरक्षण विभाग के साथ मिलकर कर रहा है। इसके तहत बगुलों और पक्षियों की अन्य प्रजातियों की गिनती भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति की संभावना को देखते हुए संचार नेटवर्क मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाए गए हैं और 328 नए टॉवर और खंभे लगाए गए हैं। प्रयागराज में रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डे सहित प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर दूरसंचार सेवा को बेहतर बनाया जा रहा है। 53 हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं।
In hockey, India League, UP Rudras defeated Surma Hockey Club 3-0 in Rourkela yesterday evening, moving to the top of the table. More from our correspondent.
UP Rudras secured comfortable 3-0 win over Surma Hockey Club in 7th match of Hockey India League at Rourkela on Wednesday.
3-0 से जीते हैं UP Rudras, Surma Hockey Club को एक तरफा हराया है और रोचक बात यह है कि दो मैचेस में एक गोल कंसीड किया है UP Rudras ने।
With this win, UP joined Karachi Garbengal Tigers at the top of the table with 6 points. Goals by Sudeep Chirmako in 2nd, Jovanpreet in 38th and Akash Deep at 58th minute have brought victory for UP Rudras. Jovanpreet Singh became player of मैच
इजी नहीं था, मैच बहुत हार्ड था, मैच रूम से ये बोल के जीतना है मैच।
टुडे मैच बिटवीन तमिलनाडु ड्रैगन्स वर्सेस वेदांता कलिंगा लांसर्स विल बी प्लेड एट 8:15 PM। यू कैन लिसन टू डेली रिपोर्ट ऑन हॉकी इंडिया लीग ऑन आकाशवाणी। दिस इज प्रतिष्ठा जैन फॉर आकाशवाणी न्यूज।
और श्रोता, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और महानगरों का रुख कर लेते हैं। तो सबसे पहले नीना, आपके पास क्या है चेन्नई में?
News from Chennai. 14 tourists were injured when a vehicle in which they were travelling to Yelagiri Hills turned turtle at a hairpin bend yesterday. They were returning after a stay at the hills. The vehicle driver lost control at the 13th bend. Based on an alert, the police rushed to the spot and shifted the injured tourist to the nearest government hospital. The condition of the injured is said to be stable. Chief Minister M.K. Stalin inaugurated the 4th Chennai Flower Show yesterday. The show will be open to public between 10 AM to 6 PM on all days until the 18th of this month. Entry tickets are priced at 200 rupees per person for those above 12 years of age and 100 rupees for those below 12. Tickets are sold through T Horticulture website.
वहीं बात की जाए राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर की, तो राष्ट्रीय दृष्टिहीन महासंघ ने कल नई दिल्ली में एक संगीत संध्या का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों को शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अब दृष्टिबाधित लोग अपनी पसंद का कोर्स कर रहे हैं और उसमें अपना करियर बना रहे हैं। उन्होंने दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ाने में प्रौद्योगिकी को शामिल करने का भी सुझाव दिया। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित महासंघ के महासचिव SK रूंगटा ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और दृष्टि बाधित व्यक्तियों के साथ अलग व्यवहार करने वाले लोगों की मानसिकता को भी बदलना है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कल पंजाबी बाग क्षेत्र में पंजाबी बाग क्लब रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष और विधायक राखी बिरला और मोतीनगर के विधायक शिवचरण गोयल भी उपस्थित रहे। इस फ्लाईओवर के उद्घाटन से स्थानीय लोगों के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रोजाना आने जाने वाले लाखों वाहन चालकों को फायदा होगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध प्रवास कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों और 2 भारतीय मददगारों को गिरफ्तार किया है। कल एक प्रेसवार्ता में दक्षिण दिल्ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय कुमार जैन ने बताया कि पिछले एक महीने में 12 बांग्लादेशियों को निर्वासित किया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासी बांग्लादेश के दुर्गापुर के रास्ते मेघालय के बाघमारा से होकर भारत में प्रवेश कर रहे थे।
मूविंग ऑन टू बेंगलुरु, President Draupadi Murmu will inaugurate the psychiatry speciality block in NIMHANS in Bengaluru today. It will provide geriatric and perinatal psychiatric support for persons with severe mental disorder and prevent suicide. This state-of-the-art facility with 118 beds is designed to provide tailored multidisciplinary and holistic care, support patients on their path to recovery and rehabilitation, enable capacity building for professionals in specialized and emerging areas of mental health. The President will also inaugurate the Central Laboratory Complex in NIMHANS today. The lab will unify critical research and diagnostic services. It will promote collaboration across disciplines in the areas of neuro and mental health disorders. The newly installed 3D magnetic resonance imaging scanner and the advanced digital subtraction angiography system will be dedicated to the nation by the President in Nimhans, Bengaluru. These two facilities will extend high quality and affordable care.
वहीं बात की जाए अगर महाराष्ट्र की तो सबसे पहले वहां पर बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संबंधित अधिकारियों को दक्षिण मुंबई में राज्य सचिवालय भवन में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया है। श्री फडणवीस ने कल मुंबई में प्रशासन मुख्यालय में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिया। बैठक में उप मुख्यमंत्री एकांत शिंदे के साथ मुख्य सचिव सुजाता सोनिक और पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला सहित प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। श्री फडणवीस ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके प्रवेश द्वार से ही सुरक्षा जांच के लिए एक मजबूत और मजबूत तंत्र तैनात किया जाना चाहिए। वहीं ग्रेटर मुंबई नगर निगम वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई उपाय लागू कर रहा है। उन क्षेत्रों में निर्माण रोकने की भी घोषणा की गई है जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में है। ये ध्यान में रखते हुए कि बायकुला और बोरीवली पूर्व क्षेत्रों में AQI 200 अंक या खराब श्रेणी को पार कर गया है, इन क्षेत्रों में सभी नागरिक और निजी मरम्मत और निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं और जब तक AQI को सुरक्षित स्तर पर नहीं ले जाया जाता तब तक फिर से ये शुरू नहीं किया जाएगा।
And now, Farhat, here's some more metro news from Hyderabad. Over 6,000 people visited the Udyan Utsav 2025, a flower and horticulture festival, which kicked off yesterday at Rashtrapati Nilayam Bolaram on the outskirts of Hyderabad. The 12-day Udyan Utsav has been organized at the Rashtrapati Nilayam Bolaram on the lines of the Amrit Udyan of Rashtrapati Bhavan in Delhi. Udyan Utsav is a unique platform to showcase a wide range of flowers and non-flowering plant displays, offering mesmerizing views for nature enthusiasts and horticulture lovers. Addressing a press conference last evening, Joint Secretary in the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Samuel Praveen Kumar, informed that about 50 stalls have been set up by the Department of Horticulture of both Telangana and Andhra Pradesh, ICAR, besides the community organizations and NGOs. Progressive farmer Suresh has formally inaugurated the stalls. Mr. Praveen Kumar informed that workshops, demos of natural farming, sustainable horticulture practices relating to various crops are also arranged as part of the Udyan Utsav. Samuel Praveen Kumar informed our correspondent that the 12-day festival will create awareness about biodiversity and role of horticulture in ecological balance.
प्रेसिडेंट मैडम के नेतृत्व में ये एक निर्णय लिया गया कि इस साल 12 दिन का एक उद्यान उत्सव कार्यक्रम हम शुरू करेंगे यहाँ पे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आम जनता जो है यहाँ पे आके राष्ट्रपति निलयम के जो फैसिलिटीज हैं इसको देखें और इसके साथ साथ सतत कृषि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है और इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर इन विषयों पर बच्चों को बड़ों को आम जनता को एक अवेयरनेस क्रिएट करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन हम कर रहे हैं।
Speaking to our correspondent, Rashtrapati Bhavan Public Relations Officer Kumar Samaresh informed that in the first of its kind effort, the Udyan Utsav will have a lot of activities for plant lovers and children.
This is very similar to जो हम अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में करते हैं उसी तर्ज पर ये हम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि सिकंदराबाद हैदराबाद और तेलंगाना के लोग इसको सक्सेसफुल करें। बड़ी तादाद में आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग आए और विभिन्न प्रकार के फूल पेड़ पत्तियां हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत सारी ग्रीनरी बच्चों के लिए किड्स एक्टिविटी कल्चरल प्रोग्राम फूड स्टॉल एवरीथिंग इज देयर। ये एक काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है जो हम चाहते हैं कि आप सब लोग आए और इसको सक्सेसफुल करें।
The entry to the Udyan Utsav 2025 is free, but one has to register their visit to the festival, which is open from 10 AM to 8 PM till 13th of this month.
जी नीना, और अगर फूलों के साथ साथ संगीत उसमें जुड़ जाए तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि कोलकाता में वार्षिक संगीत महोत्सव का भी आयोजन शुरू हो चुका है। ये 9 जनवरी तक जारी रहेगा और इस महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग द्वारा किया गया है। ये उत्सव शहर के 11 थियेटर हॉलों में मनाया जा रहा है जिनमें रविन्द्र सदन, सिसिर मंच, एकतारा, मुक्तो मंच आदि शामिल हैं। संगीतकार, कलाकार, गायक और अन्य जुड़े लोग उत्सव में भाग ले रहे हैं और उत्सव स्थल पर प्रवेश बिना टिकट व्यवस्था के सभी के लिए खुला है। महानगरों की खबरों के बाद अब मौसम का रुख कर लेते हैं। तो आज राजधानी दिल्ली में ही सुबह से ही कोहरा छाया रहेगा और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई और कोलकाता में लेकिन आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 35 से 34 डिग्री के सेल्सियस के बीच रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 23 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।
Mist in the morning and partly cloudy sky later. The minimum temperature was 24 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Bengaluru is expected to have mist. The minimum temperature was 17 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 14 degree and a maximum of 30 degree Celsius.
और मौसम के बाद अब चलिए बढ़ते हैं इतिहास की तरफ। तो बात करते हैं सन 1968 की, देश के पहले मौसम विज्ञान रॉकेट मेनका का प्रक्षेपण आज ही के दिन हुआ था।
And today, Farhat, it is International Mind-Body Wellness Day, which is being observed to promote self-care, mindfulness and holistic health practices among people around the world. The day is dedicated to Hippocrates, who is seen as the founder of natural medicine, which has been practiced for thousands of years. And in 1496, Leonardo da Vinci unsuccessfully tested a flying machine, which was lifted by a rotor powered by four men. However, the machine itself rotated in the opposite direction to the rotor.
और वहीं बात की जाए अगर 1943 की, तो आज के दिन टेलीविजन पर पहली बार गुमशुदा लोगों के बारे में सूचना का प्रसारण किया गया।
In 1938, U.S. President Franklin D. Roosevelt, a polio patient, established the National Foundation for Infantile Paralysis to find a cure for polio. It later got the name March of Dimes.
और जब मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, तो आज के दिन 1929 में महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन से मिले।
In 1957, first battery-operated electric wristwatch, Hamilton Electric 500, was announced at a press conference by the Hamilton Watch Company of Lancaster, Pennsylvania.
1959 में अलास्का को अमेरिका का 49वां राज्य घोषित किया गया।
In 1974, Constitution of the Socialist Republic of the Union of Burma was adopted that established a centralized unitary state that was controlled by the military through the Burma Socialist Program Party.
और नीना 1900 से हम बढ़ के अगर पीछे जाएं तो 1894 की बात कर लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने आज के दिन शांति निकेतन में पौष मेला का उद्घाटन किया था।
In 1977, Apple Computer Company was incorporated by Steve Jobs and Steve Wozniak in Cupertino, California and named Apple Computer Inc. for the next 30 years. Later on, the word computer was removed from its name in 2007 to reflect the company's ongoing expansion into the consumer electronics market in addition to its traditional focus on personal computers. In 1987, American soul singer Aretha Franklin became the first female artist to be inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. She was only 25 when she clinched the title of the Lady Soul.
और नीना अब चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों को। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादकों में से एक एमएस गोपाल कृष्णन की। पद्म भूषण तथा अन्य पुरस्कारों से सम्मानित गोपाल कृष्णन ने 7 दशक तक वायलिन के सुरों से हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के प्रेमियों को बांधे रखा। उनको एमएसजी के नाम से भी जाना जाता था। अपने पिता पेरूर सुंदरयम अय्यर से एमएस गोपाल कृष्णन ने संगीत की शिक्षा ली। इनके पिता स्वयं एक कुशल वायलिन वादक रहे। एमएस गोपाल कृष्णन को कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत दोनों का ही गहरा ज्ञान था। इनके बड़े भाई भी एमएस अनंतरामन भी प्रसिद्ध वायलिन वादक रहे। वायलिन वादक लालगुड़ी जयरमन और टीएन कृष्णन इनके समकालीन थे। तो आइए सुन लेते हैं थोड़ा सा इनका वायलिन की ये धुन। और चलिए अब चलते हैं अंतरिक्ष की दुनिया में। जी हाँ, भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन ने आज ही के दिन हमें अलविदा कहा था। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ प्रोफेसर सतीश धवन एक बेहतरीन इंसान और कुशल शिक्षक भी रहे। इन्हें भारतीय प्रतिभाओं पर बहुत भरोसा था। सतीश धवन को विक्रम साराभाई के बाद देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई। वे इसरो के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। प्रोफेसर धवन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कई सकारात्मक बदलाव किए। इन्होंने संस्थान में अपने देश के अलावा विदेशों से भी युवा प्रतिभाओं को शामिल किया। उन्होंने कई नए विभाग शुरू किए और छात्रों को विविध क्षेत्रों में शोध के लिए प्रेरित किया। सतीश धवन के प्रयासों से ही संचार उपग्रह इनसेट, दूर संवेदी उपग्रह IRS और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का सपना साकार हो पाया था। वहीं 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई का स्थान ग्रहण किया। वे अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी रहे। उनकी नियुक्ति के बाद के दशक में उन्होंने असाधारण विकास और शानदार उपलब्धियों के दौर से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नया रूप दिया।
Philip Everly. Philip Everly was an American musician who was half of the duo the Everly Brothers alongside his older brother Don. Phil Everly, a member of the Everly Brothers, died on January 3, 2014 at the age of 74. The Everly Brothers had hits like All I Have to Do Is Dream and Wake Up Little Susie. The Everly Brothers are known for their steel string acoustic guitar playing and close harmony singing. The duo combined elements of rock and roll, country and pop, becoming pioneers of country rock. A 1981 live BBC recording of All I Have to Do Is Dream featuring Cliff Richard and Phil sharing vocals was a UK top 20 hit in 1994. Let's listen to the evergreen hits given by Phil Everly as we fondly remember him today.
Sons of Scotland, I am William Wallace and I see a whole army.
Today is the birth anniversary of Mel Gibson. Mel is an American-Australian actor and filmmaker. He is best known for his action hero roles, particularly his breakout role as Max in the first three films of the post-apocalyptic action series Mad Max and as Martin Riggs in the buddy cop film series Lethal Weapon. In 1995, Mel Gibson produced, directed and starred in Braveheart, a historical epic for which he won the Golden Globe Award for Best Director, the Academy Award for Best Director and the Academy Award for Best Picture. He later directed and produced The Passion of Christ, a biblical drama that was both financially successful and highly controversial. Here's a clip from the movie Braveheart.
Sons of Scotland, I am William Wallace, and I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. And free men you are. What will you do with that freedom?
और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं परशुराम चतुर्वेदी को, जिनका व्यक्तित्व सहज था और उनकी शैली भी जो है वो काफी सरल थी। जहां शोधकर्मी रहे, समीक्षक रहे, गौरवपूर्ण मध्यम कद काठी और सघन सफेद मूछे उनके बड़प्पन को प्रकाशित करने के लिए काफी है और उनके मुखमंडल पर परंपरागत साहित्य की कोई विकृति की रेखा भी नहीं देखी गई। इसके अलावा उनके बहुत सारे अध्ययन रहे, उत्तरी भारत की संत साहित्य की परख, संत साहित्य के प्रेरणा स्रोत, हिन्दी काव्यधारा में प्रेम विवाह, मध्य मध्यकालीन प्रेम साधना, बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक झलक। अजीब संयोग है कि बलिया में गंगा के किनारे के गांव में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जन्मे, तो दूसरे किनारे के गांव जन्मे आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। दोनों ही प्रकांड पंडित हुए, पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्धि का शिखर छू गए और आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने विद्वता का शिखर छुआ। पर प्रसिद्धि जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई, लेकिन हिंदी में जो है इनका नाम एक अलग ही इज्जत के साथ लिया जाता है।
Michael Schumacher also celebrates his birthday today. He is a retired German racing driver who raced in Formula One for Jordan Grand Prix, Benetton and Ferrari, where he spent most of his career, as well as for Mercedes upon his return to the sport. The most successful driver in the history of the sport, Schumacher holds the records for the most world championship titles, the most Grand Prix wins, the most fastest laps and the most races won in a single season. And according to the official Formula One website, Schumacher was statistically the greatest driver the sport has ever seen at the time of his retirement from the sport.
और आज ही के दिन जन्म हुआ था प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक चेतन आनंद का। बॉलीवुड फिल्मों में जो है उन्होंने काफी हद तक बहुत अच्छी अच्छी जो है वो निर्देशन किया। इतिहास के शिक्षक रहे चेतन ने वर्ष 1940 के दशक की शुरुआत में सम्राट अशोक पर एक फिल्म की पटकथा लिखी। उनका फिल्मी सफर वर्ष 1944 में आई फणी मजूमदार की फिल्म राजकुमार से शुरू हुआ। उस फिल्म में वे मुख्य भूमिका में रहे। चेतन ने अभिनय छोड़कर निर्देशन के क्षेत्र में किस्मत आजमाई और जल्द ही इन्होंने इतिहास रच दिया।
मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का।
वर्ष 1946 में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म नीचा नागर ने कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हासिल किया। अपने जमाने की सुपरस्टार देवानंद और निर्माता निर्देशक विजय आनंद के बड़े भाई चेतन की बतौर निर्देशक पहली फिल्म नीचा नागर ही रही, और जिसने बहुत ही ख्याति प्राप्त की। और इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, तूने ओ रंगीले, आइए सुन लेते हैं।
तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के ये क्या किया, ओरे पिया हो। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया
पिया। हिंदी फिल्म जगत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की शुरुआत करने वाले इस कलाकार ने 6 जुलाई 1997 को 82 वर्ष की उम्र में दुनिया से अलविदा कह लिया।
Also birthday of Greta Thunberg. Greta is a Swedish environmental activist on climate change whose campaigning has gained international recognition. Thunberg is known for her straightforward speaking manner, both in public and to political leaders and assemblies, in which she urges immediate action to address what she describes as a climate crisis. Thunberg first became known for her activism in August 2018, when at age 15, she began spending her school days outside the Swedish parliament to call for stronger action on global warming by holding up a sign saying in Swedish, "School strike for the climate." Soon after, students engaged in similar protests in their own communities. Together, they organized a school climate strike movement under the name Fridays for Future.
और अब हम याद कर रहे हैं भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रधानाचार्य और पहले किसान स्कूल की संस्थापिका सावित्री बाई फूले को। महात्मा ज्योतिबा को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्री बाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक भी रहे। सावित्री बाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिला की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे कवित्री भी रहीं, उन्हें मराठी की आदि कवित्रियों के रूप में भी जाना जाता है।
यस फरत, एंड आई वुड लाइक टू ऐड टू इट दैट शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल टीचर्स ऑफ इंडिया, एंड शी opened all girls' school, because that time, in that century, girls were not given the education. So she has a great role to play in that.
जी बिल्कुल. और इसके अलावा प्लेग महामारी में भी सावित्रीबाई फूले प्लेग के मरीजों की सेवा करती रहीं, और एक प्लेग के छूत से प्रभावित बच्चे की सेवा करने के कारण भी इनको भी वो बीमारी हो गई और उन्होंने हमें अलविदा कह दिया. और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें कहना होगा आपसे अलविदा. हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा.
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar. Namaskar.